ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक महत्व। बहुत रेलिवेंट टॉपिक भी है, सब भारतीय बैठे हैं। तो हम शुरू करने के पहले, सो बिफोर स्टार्टिंग, फुल स्टॉप से शुरू करते हैं ना न्यू स्टेटमेंट। तो पहले हम साइलेंस में जाएंगे, 2 मिनट साइलेंस करके फिर ये सेशन शुरू करते हैं।
चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, आन बसा है आंखों में। सोना उगले सुबह का सूरज, अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी, अंबर सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी, हंसते गाते मौसम बजते, हंसते गाते मौसम बजते, घुंघरू से बरसातों में, सोना उगले सुबह का सूरज।
ओम शांति। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और आई थिंक सो हार्ट रिलेटेड सबका टॉपिक है ये। वैसे अगर हम देखें अपनी वर्तमान पर्सनालिटी को, एज सच वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, लाइक इम्पोर्टेड चीजें, हर चीज मटेरियल एस्पेक्ट में अगर देखें तो मे बी मेनी ऑफ अस आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, एंड वी बिलीव हम लोग उसके जो क्वालिटी है उस पर भी हम जरूर हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वैसे भारत की जो संस्कृति है, भारत में जो कल्चरल वैल्यूज है, उस पर भी हम बहुत प्रभावित है, मतलब वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो चीजों में शायद वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं और उस तरह से हम में से भी जो कई बार जाते हैं रहते हैं विदेश में, तो कहीं ना कहीं मिस करते हैं इंडिया के या कुछ ट्रेडिशंस को भी, होता है ना ऐसा, मिस तो करते हैं। तो मतलब दोनों बातें आज हमारे व्यक्तित्व में है कि भारतीयता भी है, कुछ वेस्टर्नाइज्ड भी है, और उसमें थोड़ा हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन अब इसके पीछे क्या रियल आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है, मतलब भारतीय संस्कृति जो, क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं वो ये जो भारतीय संस्कृति देखते हैं, जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं क्या क्या बातें आती है संस्कृति में, फैमिली सिस्टम, एक जॉइंट फैमिली, बड़ों का रिस्पेक्ट, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस है, कल्चर है, तो वो बहुत विशेष इम्पोर्टेंट जो शायद पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। तो इस तरह की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो क्या हमें नाज होना चाहिए? वैसे हम वी आर इंडियन, वैसे हम नाज करते हैं, लेकिन ओनली इंडियन के नाम से नाज करते हैं, लेकिन इंडियन संस्कृति उसके नाम से हम उसको फिर कभी कभी कह देते बैकवर्ड है, थोड़ा ये ट्रेडिशनल है, मतलब जमाना अब तो बहुत आगे चला गया है, इस जमाने से वो सूटेड नहीं है। अब एक तरह से फीलिंग्स में मिस करते हैं और एक तरफ से हम कहते हैं इसको बैकवर्ड भी है। आखिर ये दोनों को ब्रिज कैसे करें? दिस इज स्पिरिचुअलिटी, कि उसके पीछे के जो रहस्य है और उस रहस्य के कारण उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जब हमें वो पता चल जाए तो शायद हम इस भारतीय संस्कृति पे बहुत बहुत नाज करेंगे। इसलिए जो आज का हमारा ये थीम है, वैल्यूज फॉर रिक्रिएटिंग गोल्डन भारत, हम कौन सा वर्ल्ड भी कौन सा वर्ल्ड चाहते हैं, जमाना जब हम कहते हैं कौन सा जमाना चाहते हैं, जैसे कल मीराबेन बता रहे थे कि जहां इतनी समृद्धि हो, जहां इतना प्यार हो, तो वो वाला हम भारत चाहते हैं। तो आज हम उसकी ही डिटेल में चर्चा करेंगे, सो दैट जो आज हम शायद कुछ कुछ बातों में बैकवर्ड कह देते, ट्रेडिशनल कह देते, वो हमारे सिस्टम से हट जाए और जो रियल हम सभी वैसे भी नाच तो करते हैं, वो एक अंदर का वो गर्व हो। तो चलो शामिल करते हैं आज के हमारे सभी विशिष्ट स्पीकर्स को, आदरणीय मीराबेन जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई, आदरणीय रविंद्र भाई जी, रविंद्र सैजवल जी, कर्नल सती जी, बहन मीनाक्षी कश्यप जी और मिस्टर अजय प्रकाश, अगर आना चाहे। हम चाहेंगे कि आप सभी करतल धुने से हमारे मेहमानों का स्वागत करते रहें। इसी संदर्भ में फूलों से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को, वो आए और हमारे सभी स्पीकर्स का पुष्प गुच्छों से स्वागत करें। फूल और वो भी खिला हुआ बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इसलिए हमेशा खिले हुए फूलों से स्वागत करते हैं कि इस तरह की खुशबू और खिला हुआ चेहरा हमेशा रहे। जिसमें बंगाल, कर्नाटक और राजस्थान बसता है, कहीं कहीं गुजरात और कहीं महाराष्ट्र, कहीं पंजाब हंसता है। सब रंगों के फूल है जिसमें मेरा भारत व गुलदस्ता है। जय भारत, जय भारत। भारतीय संस्कृति ये सबसे प्राचीन संस्कृति, द मोस्ट एंशियंट कल्चर, और फिर द मोस्ट एंशियंट विजडम, ये भी भारत से जुड़ा हुआ है। तो एंशियंट, वैसे भी जो जितनी, एक होता है ओल्ड, एक होता है प्राचीन, तो हमारी संस्कृति प्राचीन मानी जाती है, एंशियंट। तो अब इस एंशियंट, हमारे बीच में आदरणीय मीराबेन जी आ गए, मैं अनुरोध करूंगी हमारी बहनों को आदरणीय दीदी जी का पुष्प गुच्छों से और बैच से स्वागत करें। तो ये सभी बातें जो हम आपसे शेयर कर रहे थे, इन सब का अनुभव और इन सब के पीछे के रहस्य को बताने के लिए आज हमारे सभी विशिष्ट स्पीकर्स मौजूद हैं। हमारे जितने भी अनुभव है भारत के विषय में, संस्कृति के विषय में, उनको साझा करने के लिए, और जो सैट विंग के वाइस चेयरपर्सन मीराबेन जी, आप आध्यात्मिकता से, कल भी आपने सुना कि कितनी यंग एज में आपने अपने जीवन को इस आध्यात्मिकता से सुशोभित किया और इस स्पिरिचुअलिटी का लाभ अनेकों के जीवन में 50 प्लस इयर्स से पहुंचा रहे हैं, और कितने सारे अवार्ड से भी आप सम्मानित है वो मैं रिपीट नहीं करूंगी, कल हमने सब सुना है। और जो भी भारतीय संस्कृति, जिसको हम वैल्यू बेस्ड संस्कृति कहेंगे, आप इसके धनी हैं। तो आज विशेष मीराबेन जी, आप वास्तव में परमात्मा की वो मीरा है जिन्होंने अपने, उन्होंने भक्ति के प्रवाह से संसार को में जागृति पैदा करी, और आपने इस ज्ञान के प्रवाह से, जो करंट ट्रेडिशन है, तो इस तरह की वो मीरा, आपने इस ज्ञान से बहुतों के जीवन को लाभान्वित किया आदरणीय मीराबेन। और हमारे स्नेही भ्राता रवि रविंदर जी, रवि सूर्य को कहा जाता है, तो आध्यात्मिकता की रवि, आपने अपने आप को तो रोशन किया ही किया, अपने आप में वो जागृति लाई, लेकिन आपकी इस आध्यात्मिकता की जागृति से आपने बहुत सारे अपने कार्य व्यवहार में उसको, बहुत सारे लोगों को भी लाभान्वित कराया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT में आप जूनियर इंजीनियर हैं, और वहां से हर वर्ष आप वहां के ऑफिशियल्स को इस सेमिनार में, आई थिंक सो 19 इयर्स हो गए हैं जब से ये सैट विंग शुरू हुआ है, तब से रेगुलरली JNPT के ऑफिशियल्स यहां आते हैं। आप विशेष इसके निमित्त हैं आदरणीय भ्राता रविंदर जी, आपका भी विशेष विशेष स्वागत है। जब भी उड़ान की बात आती है तो भारतीयता की, इंडियन की फीलिंग आती है, तो कौन सी एयरलाइन याद आती है? तो जैसे ही विदेश में भी जाते हैं और जब एयर इंडिया में बैठते हैं तो वो इंडियननेस की जो फीलिंग है, तो उसको आज रिप्रेजेंट कर रही है हमारी मीनाक्षी कश्यप जी। आप जनरल मैनेजर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट से, और आप 15 जून 1994 से आप एयर इंडिया में ही कार्यरत है अभी तक। आपकी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। आपका भी इस सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, सत्कार है। भारत वैसे भी शांति प्रदान देश है, लेकिन जब भी भारत हमारे देश पर आ जाती है तो हमारी जो रक्षा जो करता है विशेष आर्मी, और वो पेट्रियोटिज्म, भारत सुनते ही एक पेट्रियोटिज्म की भी फीलिंग आती है। तो आज हमारे बीच में वो ऐसी हस्ती भी मौजूद है। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के हर काम आता है। ऐसे हमारे कर्नल सती जी जो इस ज्ञान में पिछले, वैसे ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड है 1983 से, और आप फिर इंडियन आर्मी में सेवाएं दी। आपने त्राइस इंसर्जेंसी का जो स्टेज आया था उसमें पार्टिसिपेट भी किया। कारगिल वॉर में भी आप उस समय वहां मौजूद थे, वहां सेवाएं दी थी। इस तरह से भारत इस देश की जितनी भी रक्षा के बातें हम कहे सुने, आप उसमें काफी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। आज आप भी इस शेष सत्र में अपने अनुभव शेयर करेंगे। आपका भी दिलो जिगर से बार बार हम बार स्वागत है आदरणीय सती जी। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो जैसे हमने देखा कि कितनी सारी संस्कृति मतलब चली आ रही है, कर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका मीनिंग हमें पता नहीं है, और मीनिंग नहीं पता और इसलिए इम्पोर्टेंस भी इतना दिखता नहीं है। दिखाई देने में क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नहीं करूं तो, या क्यों करना चाहिए। जैसे कल उद्घाटन सेशन में हमारी अमृता बहन जी बता रही थी कि जब हम कहे कि प्रणाम करो बच्चों को तो कारण क्या है, उसके पीछे रहस्य क्या है। तो वो जब हमें पता नहीं होता है तो फिर हम सोचते हैं कि आखिर भी मतलब नहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीज है, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, लेकिन क्या है वो आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मीरा बहन जी से। मीरा बहन जी, आप जो यही जो बातें है पैर छूने की, हम पैर छूते हैं, मतलब एक रिवाज है बड़ों के पैर छूना चाहिए, या फिर जैसे हाथ जोड़ना चाहिए, नमस्ते करते हैं, सिंपल जेस्चर्स है, लेकिन ये इंडियन फीलिंग आती है इन जेस्चर्स को देखते हुए। तो इसके पीछे क्या आखिर रहस्य भी बताए, और इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, कब से क्या शुरू हुआ, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों ये सब रिवाज चल रहा है।
ओम शांति। बड़ों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, यह एक ग्रीटिंग है, अभिवादन है। तो जब हम एक दूसरों को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम बड़े शांति से करते हैं, शांत चित होकर के करते हैं। और कभी भी ऐसे नहीं होता कि नमस्ते करते समय हम क्रोध भी करें, अशांत भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो नमस्ते करना, नमस्कार करना, नमन करना, झुकना, बड़ों के आगे झुकना, ये बहुत बहुत नम्रता की निशानी है और शांत चित्त की निशानी है। नमस्ते जब हम करते हैं तो दोनों हाथ, पांचों ही हमारी अंगुली और हमारी हथेली एक दूसरों से मिलते हैं और यहां पर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश साइंटिफिकली रीजन भी है। ये पांचों ही एनर्जी हमारी एक्टिव हो जाती है। ये भी एक नमस्ते का रहस्य है। और नमस्ते जब हम करते हैं तो उस समय सामने वाले के साथ रिलेशन बहुत हमारा अच्छा ही रहता है, तो रिलेशन की भी इसमें बात है। हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एक नियम है कि रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, तो रिस्पेक्ट भी हमें प्राप्त होता है। पर आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि रिस्पेक्ट भी एक वैल्यू है हमारे जीवन के अंदर, और रिस्पेक्ट एक ऐसी वैल्यू है जो कहा जाता कि रिस्पेक्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल वैल्यूज। तो एक बहुत अच्छा ये शिष्टाचार है भारतीय संस्कृति में। और बच्चे जब मां बाप को करते हैं नमस्ते तो बच्चों का रिस्पेक्ट मां बाप के प्रति है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं उस समय। और बड़ों को भी उसमें अच्छा लगता है, बच्चों के प्रति उसको प्यार बढ़ता है और बच्चे भी बड़ों के प्रति प्यार के साथ एक रिस्पेक्ट की भावना रहती है। तो मेन तो बात यही है कि हम बहुत अच्छी तरह से, कोई हमें प्रणाम करता है, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करता है तो हम झुक करके उसको करते हैं। और मंदिर में जब जाते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल स्थान पर जाते हैं, तो उस समय मंदिर में भी हम नमस्ते करते हैं। तो वहां पर ये है बात कि भगवान से उस समय हम ये चाहते हैं कि आशीर्वाद प्राप्त हो, इसीलिए भी मंदिरों में जाकर के भक्त लोग नमस्ते करते हैं। और ये नमस्ते करने का जो सिस्टम है, ये जो संस्कार और संस्कृति उससे बनी, वो द्वापर युग से हुई है। वैसे हमारे चार युग हैं, कल भी आप सभी ने सुना, डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने सुनाया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये सिस्टम द्वापर युग से शुरू हुई, जिसको 2500 वर्ष हो गए, जो आज तक कंटिन्यू है।
तो इसका मतलब जब हम नमस्ते करते हैं तो एक तरह से अपना ईगो को शेड करते हैं, इसलिए वो सिर को ईगो का प्रतीक माना जाता है, हेड को। वो झुकाना मतलब अपने ईगो को शेड करना। तो इससे झुकने से हमारे अंदर वो एक ह्यूमिलिटी आती है, जैसे दीदी ने कहा। तो अगर इसी प्रश्न को आगे बढ़ाए तो क्या, मैं आदरणीय सती जी से ये क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या ये प्रथा, जैसे एक होता है जब हम झुके तब हम ईगो शेड करें, इसका मीनिंग है, तो क्या सदैव वो झुका हुआ हो इसीलिए वो एक निमित्त मात्र प्रथा है, या जैसे कभी कभी झुकना है वो तो जब बड़े हैं तब झुको, अदरवाइज नहीं झुको, मतलब ये क्या रहते है? अगर झुकने की बात है, झुकना तो हर क्षेत्र में, तो मोल्डिंग नेचर हर क्षेत्र में चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आजकल हम कहते हैं छोटों के आगे भी बहुत झुकना पड़ता है, ऐसा नहीं चलता है। तो क्या ये हर क्षेत्र में हर समय होना चाहिए, या जैसे ये ट्रेडिशन है कि बस जब बड़े हो तब करें?
जितना हमने इस ज्ञान में समझा है कि झुकना हमारा नेचर होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, वो हमें जो सबसे बेसिक ज्ञान देती है कि हम एक अति विनम्र स्नेह से भरी एक एनर्जी है, सोल है। तो ये हमारा नेचर ऐसा हो कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, परिवार के अंदर हो, आर्मी में हो, एयरलाइंस में हो, जहां भी हो, क्योंकि हमने देखा है जैसे इंडियन एयरलाइंस में हम जब भी अंदर आते हैं और बैठते हैं अपने स्थान पे, तो एंट्रेंस में हमें एयर हॉस्टेस मिलती है और वो विनम्रता पूर्वक हमें ग्रीट करती है। वो क्षण बहुत अच्छे लगते हैं जब हमें कोई ऐसे सम्मान देता है। हम उसको नहीं जानते बट वो उनका एक ड्रिल है। तो ऐसा ही ड्रिल अगर हम अपने लाइफ में एक नेचर बना लें, तो मैंने ये देखा है आपको बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है, और विशेष आर्मी में भी मैंने इसको अनुभव किया है और आतंकवाद के क्षेत्र में भी इसको अनुभव किया है कि अगर हम ऐसा एक नेचर रखते हैं तो जिनको हम आतंकवादी कहते हैं वो भी हमारे साथी बन जाते हैं, और हमें लगता है कि जैसे ये भी उतने ही प्यारे हैं जितने दूसरे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा नेचर होना चाहिए कि हम सदैव विनम्र रहें, सबके प्रति वो आदर रखें कि उन्हें लगे कि जैसे ये बहुत ही विनम्रता से भरा हुआ है, इसका ईगो जो है बहुत ही कम है, और ये एक प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप में बैठा हुआ है जिसको हम कहते हैं आत्मिक स्वरूप।
एक बात मुझे ये कहनी है कि जो हम झुकते हैं तो उस समय सिर्फ क्रियाकांड के रूप में ना झुके, लेकिन उस समय हमारी मानसिक स्थिति भी वही होनी चाहिए। ये बहुत 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 आवश्यक है, फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं।
या सो दूसरे शब्दों में अगर कहें कि सदा ही झुका हुआ नेचर हो, अर्थात सदा मोल्डिंग हो, तो ये जब थोड़े से झुकने से हमको आशीर्वाद मिल सकती है, इसलिए झुकते हैं, आशीर्वाद के पात्र होते हैं, आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलती है। तो अगर सदा ही झुका हुआ हो, मोल्डिंग नेचर हो, तो शायद आशीर्वादों की तो भरमार हो सकती है, दुआओं से जीवन भरपूर हो जाएगा जो फाइनली चाहिए। इसलिए फिर कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। एक ना इंडिविजुअल हम ये लक, ये विशेष लेना चाहते हैं कि मुझे विश करो, मुझे ब्लेस करो, तो अगर ये जीवन हो जाए तो ऑलवेज ही ब्लेस्ड होंगे। आपने आदरणीय सती जी ने ये बताया कि दुश्मन भी झुक जाता है, और आप तो रहे हो दुश्मनों के बीच में भी, तो क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? आप कारगिल वॉर में भी थे, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस 95-96, 2005-2006, 2006-2008, तीन बार रहे, तो क्या आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है?
एक बार हमें रात को 11 बजे आदेश मिला कि कश्मीर श्रीनगर के जो इलाका है लाल चौक का, उसमें सर्च करना है। तो हम लोग उस इलाके में पहुंचे, वो ऑपरेशन करीब 1 बजे तक चला। हमें कई सारे इलाके दिए गए थे, तो मैं भी घर करते हुए सर्च करते हुए निकल रहा था। तो मेरा एक ड्रिल था कि जब मैं अपनी पलटन से निकलता हूं ऑपरेशन के लिए, तो अपनी टीम के साथ हम पूरा उसका कॉम्बैट ड्रेस में होते हैं, चित कपड़ा ड्रेस होता है, बुलेट प्रूफ पहना होता है हमारा, सर पे हमारा हेलमेट होता है, हाथ में हमारे एके राइफल तैयार रहती है ताकि हम अगले 1 सेकंड में बुलेट फायर कर सकते हैं, क्योंकि मिलिटेंट भी उतना ही रेडी है हमको मारने के लिए। बट चलने से पहले एक ड्रिल हम ये करते थे कि 1 मिनट मेडिटेशन करके चलेंगे। एक ऐसी भावना थी, एक ऐसी फीलिंग थी कि अगर हम एक क्षण भी परमात्मा को देके कोई कार्य करते हैं तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर हम जब चलते थे तो मैं अपने जवानों से बातचीत करके चलता था कि देखो हम सर्च तो करेंगे घरों को जैसे आदेश मिला है, बट उस सर्च में इंसानियत दिखनी चाहिए उस घर वाले को। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हैवानियत है, ये हल्ला कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं हर चीज के साथ, तो वो रेस्पेक्ट भी उनको दिखना चाहिए, और विशेष जब लेडीज होती हैं तो उनके साथ वो सम्मान हमारा दिखना चाहिए। तो ऐसे हम घर सर्च करते हुए जब जा रहे थे तो एक घर में सर्च करके हम बाहर निकल रहे थे, तो वो जो मालिक था उसने मुझे आवाज दी कि सर मुझे आपसे बात करना है। तो मैंने बोला बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। कहता है सर आपने जिस ढंग से मेरे घर को सर्च किया और जिस ढंग से आपका व्यवहार मैंने देखा, तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आपसे कुछ बात करूं। मैं बताइए। कहता है सर ये जो मेरे घर में आप ये बच्चे को देख रहे हो, ये जो लड़का देख रहे हो, ये मेरा छोटा भाई है और ये मिलिटेंट है। कश्मीर में मिलिटेंट को ढूंढना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। मिलिटेंट मिलते ही नहीं है, और जब तक आपको कोई मुखबर बताएगा नहीं कि ये मिलिटेंट है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और हम उस घर से निकल रहे थे, हमें नहीं पता था ये कौन। हमने तो सोचा कि इसका कोई होगा ये घर का
इनहैबिटेंट, उसने कहा कि सर ये मिलिटेंट है, गलती से ही इस राह पे चला गया, इसके पास एके राइफल है, अब ये बहुत पछताता है, हम भी बहुत पछताते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं। तो मैंने बताइए, मैंने कहा आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। कहता सर ये एक गैरेज में, मोटर गैरेज में काम करता है उस इलाके में, आप कल एक ऑपरेशन करके इसको वहां से शाम को 4 बजे उठा लीजिएगा और जनता और मिलिटेंट्स में खबर फैलेगी कि इसको पकड़ लिया गया है, फिर ये आपको अपना हथियार देगा, फिर आप जब इसको पुलिस को सौंपोगे तो अपनी रिपोर्ट ऐसी लिखना जिससे कि इसको ज्यादा लंबी सजा ना मिले और ये फिर मेन स्ट्रीम में आ जाए। और हमने ऐसे ही किया, तो तब मुझे लगा कि देखो आपका अध्यात्म, आपका विनम्रता, आपकी पॉजिटिविटी कैसे ऐसे ऐसे आतंकवाद में भी सुंदर रिजल्ट्स दे सकती है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अब दूसरा एक ट्रेडिशन है भारतीय संस्कृति कहो कि गुरु जरूर मतलब मानते हैं, आजकल चाहे नहीं भी करते लेकिन करना चाहिए, गुरु का सिस्टम है कि जैसे मानते हैं कि हमारे ये कुल गुरु है, घर में गुरुज होते हैं और बहुत ज्यादा आजकल फोर्स भी है, एक एक लाख की गैदरिंग और एक एक लाख की फॉलोइंग भी है। हम ये एक भारत का ये बहुत बड़ा स्टाइल कहो या संस्कृति भी है, तो ये जो हम गुरु करते हैं तो आखिर क्या इसके पीछे राज करना चाहिए या वर्थ है, इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है? मैं हमारे भ्राता रविंदर जी से ये क्वेश्चन पूछूंगी।
ओम शांति। भारतीय संस्कृति में गुरु करना, ये अभी हम जब छोटे थे, जब ज्ञान मार्ग में आने से पहले, जबकि मेरी उम्र अंदाज से 15 साल के आसपास होगी, तब मैं पुणे में था, बजाज एटोम के पास में एक सिटी थी, उसमें मैं रहता था। तो मुझे भी एक ऐसे मेरा फ्रेंड मिला और उसने मुझे वो गुरु के पास लेकर गया और फिर उसने कहा कि ये मेरे गुरु है, आप इनका आशीर्वाद लेकर इन्हें अपना गुरु बनाना। तब मैंने ही उनको पूछा क्या आवश्यकता है इसको जीवन में लेने की, तब उन्होंने कहा हाँ कि आपको ज्ञान जो है वो बहुत सारा मिल जाएगा दुनिया से, उस ज्ञान के आधार से आप जी भी लोगे, लेकिन जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और वो है कि किस दिशा में जाना है, वो दिशा दिखाने का कार्य गुरु करता है, इसीलिए तुम्हें गुरु करना चाहिए। धन आएगा, दौलत आएगी, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, लेकिन अगर मेरा कदम अगर गलत रास्ते पर गया तो वो सब कुछ होने के बाद भी मुझे जो जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, वो मुझे वो गुरु दिशा अगर दिखाएगा तो उस दिशा के आधार से अगर मैं चलता हूं तो मुझे ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो मुझे तब विश्वास बैठा कि गुरु करना चाहिए, तब मैं वो गुरु किया और उन्होंने मुझे मंत्र दिया और वो रोज सवेरे मैं जपता था कि भाई हाँ जय राम श्री राम जय जय राम। मेरे अभी तक भी वो पहले वाली डायरी है, इस ब्रह्मा कुमारीज में आने के पहले, यहां हमको बता दे मैं आत्मा हूं लिखो, लेकिन उस समय मैं रोज एक पेज लिखता था 108 बार जय राम श्री राम जय जय राम, छोटे छोटे अक्षरों में, और वो पूरा लिखकर वो डायरिया भरी हुई ऐसी रखी है ताकि मैं पहले किस लिए ये गुरु किया ये मुझे याद दिलाने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरु आपको दिशा देता है, तो इसलिए गुरु इस जीवन में करे। आपके पास भी ज्ञान है लेकिन उन्होंने अपने स्थिति के आधार से, अपने जीवन के अनुभव के आधार से आपको जो मार्गदर्शन करेगा और उस पर हम जब चलते हैं तो हमें जीवन के अंदर जो भी पड़ाव आते हैं दुख के समस्या के, उससे पार करने के लिए वो हमें एक्सपीरियंस उनके काम आते हैं। इसलिए गुरु करना मुझे ऐसे लगता है कि आवश्यक है। फिर आपकी च्वाइस है कि पे कौन करना है, क्या करना है, लेकिन आपको एक बैकबोन रहेगा। जैसे आपके माता पिता आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट करते हैं अन्य बातों के लिए, भौतिक सुख साधनों को आपको देने के लिए, लेकिन ये आपको गाइडेंस करेंगे आपकी राह जीवन को दिशा देने के लिए। तो इसलिए गुरु करना मुझे लगता है अति आवश्यक है।
बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर इसी प्रश्नों का हम आगे बढ़ाए कि आज के परिपेक्ष में जो हम हालात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिस तरह की भी गुरुडम में मतलब फॉलोइंग चल रही है और उसके बाद जो जो भी होता है, तो समवेयर वो फेथ हिल जाता है और टू द एक्सटेंट कि शायद भगवान पर भी फेथ नहीं रहता क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा किया। और फिर नहीं केवल भगवान पर, जनरल किसी भी ऐसे रिलीजन वाला गुरु हो, मतलब उस परिवेश में आया हुआ हो, हम सोचते ये यूजलेस है। तो अब दिशा भी चाहिए, एक बैकबोन भी चाहिए, ब्लेसिंग्स भी चाहिए, लेकिन ये जो परिवेश चल रहा है, अब इस परिवेश में ये कैसे अप्लाई करें, हम आदरणीय मीराबेन जी से जानना चाहेंगे इसको।
वैसे कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु ने हमें जो दिशा दिखाई, गुरु ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, वो परमात्मा की ओर दिया। तो गुरु हमें जो सतगुरु परमपिता परमात्मा है उनकी ओर हमें दिशा दिखाते हैं। गुरु का अर्थ ही है गु माना अंधकार और रु माना अंधकार को नष्ट करना। तो गुरु माना अंधकार को नष्ट करके हमें रोशनी की ओर ले जाते। रोशनी का यहां पर अर्थ है ज्ञान की रोशनी। तो जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए वो है सच्चे गुरु। वैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में देहधारी कोई भी गुरु को याद नहीं करते हैं, लेकिन शिव परमपिता परमात्मा निराकार जो सतगुरु है उनको याद करते हैं। आप सभी को भी अच्छी तरह से जानकारी है, पता है कि जो भी गुरु है, देहधारी गुरु है, वो भी परमात्मा के ही ध्यान में बैठते हैं, तो वो भी परमात्मा को ही याद करते हैं। तो गुरु अर्थात जिसकी ओर हमें बहुत नम्रता है, क्योंकि उसने हमें मार्गदर्शन वो देते हैं। और जब नम्रता होती है तो नम्रता भी हमारे जीवन की वैल्यू है, नम्रता प्रोटेक्टर है सभी वैल्यूज में, तो वो हमारे जीवन की रक्षा करता है और इसीलिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु वो है जो बहुत श्रेष्ठ रीति से हमारा ईगो जो है, ईगो भी मेल्ट कराते हैं। और गुरु वो है जो हमें हमारी कमियां जो होती है, हमारी खामियां जो होती है, हमारी त्रुटि जो होती है, हमारे अवगुण जो होते हैं, वो सारे अवगुण हमें दर्शा करके वो अवगुणों को हम नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और गुणों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो है गुरु।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। बहुत राइट वे में आज के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस मिली कि गुरु की जरूरत नहीं है, सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु, सच्चा गुरु, वो एक ही है। तो अगर परमात्मा, क्योंकि जैसे दीदी ने बताया कि गुरु के लिए एक व्यक्ति हो जाता है जिसके आगे मैं बहुत नम्र हो सकती हूँ, ऐसी पर्सनालिटी जिसके आगे मैं एकदम सच्चा भी हो सकती हूँ, ऐसी पर्सनालिटी जिसके आगे मेरा कोई ईगो नहीं है, और ऐसी पर्सनालिटी जो मुझे गाइडेंस भी दे। तो ये चारों क्वालिटीज केवल एक परमात्मा में हमें दिख सकती है। तो इसलिए आज के परिपेक्ष में अगर सदगुरु हमने कर लिया, जान लिया उसके डायरेक्शंस को, उसके आगे 100% समर्पित है, क्योंकि गुरु के आगे हम अपनी बुद्धि नहीं चलाते, सतवचन महाराज जो उसने कह दिया वो सच्चा है। तो मतलब परमात्मा के डायरेक्शन मिले तो हम अपनी बुद्धि भी नहीं चलाएंगे, और क्योंकि परमात्मा कह रहा है तो 100% राइट है, तो फेथ भी है और नेचुरल है, ब्लेसिंग्स तो फिर मिलेगी मिलेगी। तो इसलिए गुरु तो करना चाहिए, लेकिन सदगुरु जरूर हर कोई को करना चाहिए, और वो है परमात्मा। तो हाँ जी मीरा बेन जी और कंटिन्यू करें।
जब सदगुरु करते हैं तो हमारा मन जो है वो भटकता नहीं है, और दूसरी महत्व की बात कि हमें जीवन के अंदर एक मुक्ति मिल जाती है, जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्ति की राह मिल जाती है। तो जो हमें जीवन मुक्ति की राह दिखाता है और हमारा मन भटकने से जो बिल्कुल वंचित कर देता है, माना मन भटकता ही नहीं है, लेकिन मन को एक ठिकाना मिल जाता है, और मन ऐसा है कि जब मन को ठिकाना मिल जाता है तो बहुत अच्छी तरह से वहां पर मन एकाग्र हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति होती है उसको घर नहीं है तो ढूंढते रहते हैं यहां वहां और भटकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर मिल जाता है तो भटकना बंद हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही हमें सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमारा मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, और हमें बहुत अच्छी तरह से श्रेष्ठ ठिकाना मिल जाता है जो हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 लाभदायक रहता है।
बहुत बहुत थैंक्स दीदी, बहुत राइट मिला। तो हमें गुरु तो करना ही चाहिए, जरूरी है डायरेक्शन के लिए, लेकिन सदगुरु है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है, द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है, न कोई सिर झुकाने का सिस्टम है, लेकिन सदगुरु परमात्मा है। और सिर भी इसलिए नहीं झुकाते क्योंकि ऑलवेज झुका हुआ है, जो वो कहते हैं वो सदा हम मानते हैं, इसी को झुकना कहते हैं। तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये सारी परिपाटी वैसे फॉलो भी करते हैं, बट फिजिकल इस तरह से नहीं भी है। अब एक और संस्कृति हमारी भारतीय की है, विशेषकर जब हम एयर इंडिया में फ्लाई करते हैं, जैसे एंटर होते हैं तो साड़ी का सिस्टम है। तो जैसे वो साड़ी दिखते हैं तो एक इंडियननेस की फीलिंग आती है। हमारे बीच में मीनाक्षी जी, अजय प्रकाश भाई एयर इंडिया जीएम के विद्यमान हैं। मीनाक्षी जी से क्वेश्चन है कि जो साड़ी का सिस्टम बहुत एंशियंट है, बड़ा डिफिकल्ट भी होता है बहनों के लिए, लेकिन वो आज तक मेंटेन किया हुआ है, तो जरूर कुछ रहस्य होगा, हम जानना चाहेंगे आपसे।
ये रहस्य इसका यही है कि भारतीयता झलकती रहे, हमारे क्रू जो हैं कहीं भी जाएं, भले ही वो भारतीयों के साथ ट्रैवल कर रहे हों या किसी पाश्चात्य देश के किसी यात्री के साथ, तो उनको लगे कि ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो इसका मेन रीजन तो यही है। और इसके अलावा साड़ी एक बहुत सुंदर पोशाक है, एक ड्रेस है जो भारत की पहचान है। तो इसके लिए हमने एयर इंडिया में उसको रखा है, हालांकि अभी थोड़ा उनको दूसरी ड्रेस भी, सलवार कमीज या चूड़ीदार वगैरह भी दिए हैं, लेकिन साड़ी को फिर भी रखा है, सिर्फ इसलिए कि ये भारतीयता की पहचान बनी रहे। और क्योंकि एयर इंडिया एक नेशनल कैरियर है भारत का, तो भारतीयता जहां भी हमारा एरोप्लेन जाए, हमारा क्रू जाए, भारतीयता को दर्शाते रहें। तो इसका यही रीजन।
बहुत राइट बताया। अब ये जो ये कि साड़ी पहने भारतीयता की पहचान होती है, हमको लगता है हम भारत के कैरियर में हैं। अगर इसकी थोड़ी शुरुआत देखें, मैं इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी, अगर हमारे देवी देवताओं को भी देखे कोई भी सलवार कमीज में नहीं है, जीन्स पैंट में कोई नहीं है, ऑलवेज एक साड़ी में बताया जाता है। तो जब हम देवी कहते हैं, देवी देवताएं, तो देवी और एक रिस्पेक्ट की भावना होती है, तो ये एक ड्रेस बहुत मैटर करता है। हम इसको केवल भारतीय संस्कृति की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली एक डिवाइन फीलिंग, क्योंकि देवी देवताओं की ये ड्रेस है, तो वो देवी देवताओं की ड्रेस है। और साड़ी मतलब एक फुल कवर्ड, ये भी एक सिंबल है, तो इसलिए भी एक साड़ी का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये कोई बैकवर्ड नहीं है, लेकिन डिवाइन फीलिंग। हम चाहते हैं आजकल कि भई लोगों की दृष्टि, नजर अच्छी नहीं है, खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कंप्लेंट्स है, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं चल रही हैं। लेकिन यही जो पहराव, जो इंडियननेस है, और जो पहले कभी नहीं होता था, कारण यही था कि वन ऑफ द बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इस तरह के क्राइम्स को भी स्टॉप कर सकता है, कि डिवाइन की फीलिंग, मैं देव आत्मा हूँ, मैं देवी हूँ, तो इसलिए भी ये साड़ी का महत्व होता है। अब एक और संस्कृति है भारत की, कि हमेशा कहते हैं भारत माता, नदियों के लिए गायन है, नदी का विशेष गायन है, ऑलवेज माँ बहन के नाम से है, जितनी भी नदियां हैं एक्सेप्ट एक ब्रह्मपुत्रा, बाकी गंगा, यमुना, सरस्वती, और भारत को भी माता के नाम से कहा जाता है। तो भारत में वैसे कोई देश जेंडर के लिए नहीं, मतलब उस तरह से नहीं बोला जाता, इंग्लैंड में इंग्लैंड माता मतलब इस तरह से, या मदर इंग्लैंड कभी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन भारत के लिए ही ये गायन है। और भारत में देवियों की भी पूजा होती है विशेषकर, तो आखिर भी इसके पीछे क्या भारतीय, क्या पीछे रहस्य है इन सब के पीछे? तो मैं आदरणीय सती जी, जो इस ज्ञान में भी है, आप हमको इनके पीछे के रहस्य को बताएं।
जब हम माताओं की पर्सनैलिटी को रीड करते हैं और पुरुषों की पर्सनैलिटी को रीड करते हैं, तो कई सारी ऐसी विशेषताएं माताओं में होती हैं, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को उठाना, और अपनेपन की भावना, पालना करने की भावना, लुक आफ्टर करने की भावना। ये सारी ऐसे गुण हैं माताओं में जो समाज को भी चाहिए और हर इंसान को चाहिए। और भारत माता में शायद हम इसलिए उसको माता का रूप देते हैं कि हम उससे वही अपेक्षा करते हैं जो माँ से करते हैं, कि जैसे माँ अपने बच्चे के लालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ती है, ऐसा ही हमें लगता है कि जैसे भारत भी हमारी माँ है, जहाँ हमें भरपूरता मिलती है। और यही भारत जब स्वर्ग था तो हर तरफ से भरपूर था, प्रकृति से लेके इंसान, हर चीज भरपूरता में थी, खुशियों से भरा हुआ था। समय के साथ जैसे ही हमारे विकार हमारे बीच में आए, कमियां आई, तो थोड़ा सा एक धुंधलापन दिखा, कमियां दिखी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो माता शब्द जुड़ा है, ये एक सम्मान सूचक है, एक रेस्पेक्ट है। और इसमें इसलिए भारत माता से हमने इसको जोड़ा है क्योंकि हमें भरपूरता मिले और वो भरपूरता का एहसास हमें होता है जीवन में, इसलिए हम उसको सम्मान के साथ पुकारते हैं। ओम शांति।
और माता में क्या वात्सल्य की भावना भी होती है और सहन शक्ति भी बहुत होती है ना, तो हमें भी एक प्यार और एक सहन करने की शक्ति मिल जाती है माता कहने से।
इसका मतलब जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, तो इसका मतलब है जिस संस्कृति में सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है, जो संस्कृति सहनशीलता से भरपूर है, जो संस्कृति वात्सल्य प्रेम, एक वैसे भी आप देखो, आप रास्ते चलते बेटा रिक्शे वाले को भी कह दो ना, बेटा ऐसे नहीं, बेटा तो वो वर्ड बोलते ही शायद उसमें भी थोड़ा ना फीलिंग डिफरेंट आ जाती है, रिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाती है। तो भारतीय संस्कृति का मतलब है वात्सल्यता की संस्कृति, और भारतीय संस्कृति मतलब माता अर्थात जैसे बताया समाने का गुण, धरती माँ कैसे समा लेती है, तो भारत में एक समाने का नेचर, भारतीय संस्कृति में एक समाने का नेचर होता है। तो ये भारतीय संस्कृति ये सारे गुणों को प्रदर्शित करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सतीश जी को। और अब मैं जो भारतीय संस्कृति में एक और बात आती है कि हमेशा लेडीज फर्स्ट, माताओं को पहले दर्जा हमेशा कहा जाता है। इवन कोई जर्नी में भी होता है, प्लेन में भी होता है, तो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन एक भावना के तौर पर दिया जाता है। तो हमारे बीच में अजय प्रकाश, भ्राता अजय प्रकाश जी है, आप जनरल मैनेजर पर्सनल हेडक्वार्टर्स दिल्ली एयर इंडिया से पधारे हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य, क्यों लेडीज फर्स्ट बोला जाता है?
सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा, ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि मुझे बहन मीरा और बहन संगीता के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, और इतने सामरिक जिसपे हम संस्कृति जो हमारा विषय है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर, उसके ऊपर बहन मीरा के इतने बहुमूल्य जो विचार थे उनको जानने का अनुभव मिला। मैं दो चीजें, आपने जो मेरे से पूछा है भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान, उससे पहले मैं दो चीजें आपसे जरूर कहना चाहूंगा। एक तो जो आपने नमस्ते की व्याख्या करी, और इस व्याख्या को अभी तक मैंने दूसरे परिप्रेक्ष्य में सुना था जिसको कहते थे नमः अमामि अस्ते, अर्थात मैं आपके में अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, और उसका मतलब यही होता कि अगर आप किसी के अंदर अपने आप को समर्पित करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपका कितना भी हितैषी ना हो पर वो आपको आशीर्वाद देगा। तो मेरे हिसाब से ये जो आपकी व्याख्या थी ये बहुत ही रेलिवेंट थी, और नमः अमामि अस्ते ये अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने की एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और हमारे धर्म में, हमारे अध्याय में, हमारे वेदों में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जहां पर एक देवता और जब दूसरे देवता में किसी पर विचारों के ऊपर सहमति नहीं थी और उनसे नाराज हो गए तो सिर्फ नमस्ते करने मात्र से उनके आपस के विचार जो मतभेद थे वो दूर हो गए और फिर साथ हो गए। दूसरी जो मैंने एक आपसे सीखी है कर्नल साहब से भी, गुरु का महत्व, मेरे ख्याल में अगर मैं तीसरी बात रेलेवेंट है इसलिए मैं गुरु के महत्व पे आ रहा हूं। हमारे यहां जितने भी महापुरुष या अवतार हुए हैं उन सबके साथ एक गुरु का नाम जुड़ा रहा, चाहे वो भीष्म के साथ परशुराम और बृहस्पति थे, श्री राम के साथ संदोपिन थे, अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य थे या द्रोणाचार्य के साथ एकलव्य थे। तो गुरु का जो एक महत्व है वो अपने स्थान पर रहा, और आखिर में शायद आइए हमको मौका मिला कि जब हम अपने लिए कुछ जानना चाहते थे तो शायद गुरु के रूप में हमने ब्रह्म कुमारी को चुना, और एक हम 5 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। तो आपके यहां कोई इंडिविजुअल गुरु नहीं, लेकिन आप सबका जो हमारे लिए सम्मिलित प्रयास है हमको शिक्षित करने का, मैं उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तीसरी बात, जो स्त्री का स्थान भारतीय संस्कृति में, बहन संगीता ने मेरे से कहा है, शायद हिंदू धर्म एक अकेला धर्म है जहां पर कोई भी हमारा अवतार भगवान अकेला नहीं है। अगर शंकर से पहले गौरी हैं तो राम से पहले सीता है और कृष्ण से पहले राधा हैं। हमने स्त्री को हमेशा शक्ति का रूप माना, शिवलिंग भी सिर्फ शिवलिंग नहीं है, उसके साथ भी पार्वती पात्र है। स्त्री को जो इस जगत की जननी है हमने हमेशा उस तरह से उसको देखा और वही सम्मान दिया। शायद यही है कि जब राम को लंका विजय जानी थी तो उन्होंने भी नवरात्रों में करके शिव दुर्गा के 9 की पूजा करी। आज के समाज में जब हम कहते हैं कि हम स्त्री को बराबर का दर्जा देना चाहिए तो कई बार मुझे ठीक नहीं लगता। हम तो उस संस्कृति से हैं जहां पर स्त्री को हमने हमेशा अपने से ऊपर माना है, बराबर वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 1-2 हजार साल में जो हमारी संस्कृति रही, जिसमें आक्रांताओं का आक्रमण रहा, जिसके अंदर हमारे देश में दूसरे लोगों ने राज किया, शायद वजह थी कि हमने अपनी स्त्री को अपने चार दीवारी के बीच में सीमित कर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप आधुनिक भारत में देखें, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, या एनी बेसेंट हो, या मदर टेरेसा हो, जैसे जैसे वो दूर होता गया, वो अपने समाज में आती रही और अपना अपना योगदान देती रही। आज के युग में भी मैं जहां तक समझता हूं, सबसे बड़ा जो हमारा उदाहरण है, हमारी एयर इंडिया है, हमारी डायरेक्टर पर्सनल, जो कि एक उच्चतम पद है हमारे एयर इंडिया पर, एक महिला पीठासीन है, और मेरे साथ जो काम करती हैं वो भी महिलाएं हैं। तो मैं कई बार अपने मजाक में कहता हूं कि मैं घर पे फोन करता हूं तब यस मैडम, ऑफिस में कोई फोन करता हूं तो तब यस मैडम। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि स्त्री का स्थान हमने कभी किसी को द्वयम दर्जे का दिया, हमने बराबर दिया और बल्कि पुरुषों से ऊपर दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी संस्कृति का ये जो पहलू है, जो कि पिछले हजारों साल से रहा है, वो आने वाले हजारों साल तक भी रहे। धन्यवाद।
आपको एक बात कहूंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में भी ब्रह्मा कुमारी नाम है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो ब्रह्मा कुमारी नाम है, और जो इतने सारे सेवा केंद्र है 137 कंट्रीज में, वो भी बहने संभालती है और बहने इंचार्ज है।
यहाँ का टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ब्रह्मा कुमारी इसका बहने ही देखती है, इसलिए कहा नारी नरक का द्वार दुनिया में कहा, इसलिए हमने कहा कि नारी ही स्वर्ग का द्वार खोलेगी, क्योंकि वो नरक का द्वार बोला गया, तो इसलिए वो भी। एक और बात मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति रामायण पढ़ता था, तो बहुत रामायण का प्रेमी था, तो वो वाइफ के साथ बैठा हुआ था स्टेशन, और रामायण हाथ में ली। एक यंगस्टर था, उसको बहुत इरिटेशन हो रही थी, मतलब जब तक ट्रेन नहीं आती है तो रामायण, बॉम्बे की बात है, लोकल ट्रेन आनी थी, तो वो अपना पढ़ रहा था। उसने बोला कि क्या है इस रामायण में, क्या लिखा है, जबरदस्ती तुम इतनी पुरानी पुरानी बातें लिखते, मुझे तो कुछ इसमें लगता नहीं, ये वो बोलने लगा। अच्छा, वो चुपचाप से सुनने लगा। ट्रेन आई, वो भी अपने यंग था, युगल वाइफ के साथ था, और ट्रेन आई, फिर चढ़ने लगे, तो क्या हुआ, 2 मिनट रुकती है, वो पहले चढ़ गया और उतने में ट्रेन चली गई। अब फिर वो देखता रहा कि अरे बच्चा और युगल तो नीचे ही है, और उसको बहुत खराब लगा। फिर वो दूसरे स्टेशन पे गया और फिर वापस आया, क्योंकि छोटा बच्चा था, तो आया और वापस उस स्टेशन पर आया, तो उसने जो बुजुर्ग युगल हस्बैंड वाइफ थे, तो वो हस्बैंड ने बोला कि देखो हमारे रामायण में इसकी भी शिक्षा है। तो बोला क्या, बोला प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, जब वो नाव वो आती है, बोलते हैं ना केवट नाव लेकर आता है, उनको उस पार जाना होता है, तो पहले राम जी ने पहले प्रिया सीता जी को पहले चढ़ाया, फिर खुद चढ़ा। बोला कि देखो अगर वो चढ़ जाती, आप तो कैसे भी फास्ट चढ़ जाते, पहले उसको चढ़ाना चाहिए और बाद में खुद चढ़ना चाहिए। तो हर बात में हमारे भारतीय संस्कृति में, चाहे क्यों बहनों को आगे रखा, किस भाव से आगे रखा, उसके पीछे भी बहुत रहस्य है। इसलिए भी इसको, तो इस बात को कि हमेशा बहने, जहां भी ईगो की बात नहीं है, लेकिन बहन अर्थात उसमें नम्रता, जिम्मेवारी की भावना, घर में माता को भी मतलब घर में भी कहते ना, या बच्चे के लिए भी कहते कि माता प्रथम गुरु है, और घर में भी जब अगर कोई जो बहू आती है वो अच्छी निकल जाए तो 2 अलग परिवारों को भी जोड़ देती है, और वही बहू अगर ऐसी वैसी आ जाए तो जॉइंट फैमिली है उसको भी अलग कर देती है, शायद बेटे और बाप के बीच में भी दरारें पड़ जाती है। तो ये सारा बहनों पर बहुत निर्भर करता है, इसलिए यहाँ बहनों को सबसे आगे प्रेफरेंस दी जाती है, कि बहनें जहां बहुत इतनी डिवाइन बन जाए। कॉलेज में भी क्या होता है, कहते हैं ना बहुत बिगड़ा हुआ कॉलेज है, किस वे से हम बिगड़ा हुआ कहते हैं, हम सबको, हम सब जानते हैं जहां वल्गैरिटी हो, और उसमें कहां कहां बहनों का योगदान हो जाता है। तो बहनें ये एक्चुअली डिविनिटी का प्रतीक है, बहुत हाईएस्ट फीलिंग है डिवाइन की बहनों के प्रति, इसलिए भारतीय संस्कृति में बहनों का विशेष मान भी है। और इस संदर्भ में कहा गया लेडीज फर्स्ट, वो खाली सब जगह आगे करने की बात नहीं है, इस भावना से लेडीज फर्स्ट। अब हम बहुत सारी भारतीय संस्कृति के बारे में जो बात कर रहे थे, उसमें एक और हमारी भारतीय संस्कृति में आता है कि जितने इट्स लाइक, क्योंकि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इतनी एथनिक डाइवर्सिटीज है, कम्युनिटी इतने अलग अलग है, भाषाओं की जितने कम्युनिटीज उतनी भाषा, जितने स्टेट्स उतनी भाषा, और इतने सब होते भी एक एकता, यूनिटी। मैं समझती आप में से कईयों ने वो जवाहरलाल नेहरू का फेमस बुक यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ी भी होगी, जो उन्होंने प्रिजन में लिखी थी। तो इतनी विविध कल्चर भारत में है, और इतने भारत में फेस्टिवल्स है, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। अगर सारे स्टेट्स, 29 स्टेट्स हैं भारत के, 7 यूनियन टेरिटरीज है, अगर सारे मिनिमम एक एक स्टेट के फेस्टिवल भी देखा जाए तो 3 या 4 तो हो ही जाते हैं। तो अगर इस तरह से करें तो 365 दिन ही फेस्टिवल हो सकते हैं, भारत में होते ही हैं। तो आखिर भी ये इतने सारे फेस्टिवल्स या उत्सव, इसके पीछे क्या रहस्य, ये भी एक भारतीय संस्कृति मानी जाती है। हम ऑफिशियल सारी ड्यूटीज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, ऑल आवर ऑफिशियल कमिटमेंट्स, और जब फेस्टिवल्स की बात आती है पूरी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से की जाती है, चाहे हमको अच्छा लगे नहीं लगे, हम माने नहीं माने, पर एक एंजॉयमेंट के नाते से ही उस फेस्टिवल को जरूर मानते हैं। तो भारत के इतने फेस्टिवल, चाहे ऐसा शायद कोई देश ऐसा है ही नहीं जिसमें इतनी फेस्टिवल्स हो, तो इसके पीछे क्या रहस्य है जो इतने सारे उत्सव है, और क्यों ये मनाया जाता है? मैं आदरणीय मीरा बेन जी से इसके पीछे का रहस्य जानना चाहूंगी।
फेस्टिवल अर्थात बहुत उमंग और उत्साह से हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं। वैसे तो रूटीन कार्य के अंदर सभी बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं, कोई भी त्योहार आते हैं, तो हम सभी उमंग और उत्साह में आ जाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि त्योहार हमें आध्यात्मिक रहस्य उसका क्या है, जब वो बात हम समझते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमें एक इंटरनली आंतरिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। आप एक ही त्योहार ले लीजिए, शिवरात्रि, जो बहुत धूमधाम से भारत देश में मनाते हैं, विदेश में भी जहां भारतीय है वहां पर मनाते हैं। तो शिवरात्रि जब उसका आध्यात्मिक अर्थ हमें पता है कि रात्रि माना अंधकार रूपी रात्रि, और इसीलिए कहा गया कि ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश होता है। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य वो कब इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के क्या कर्तव्य करते हैं और कैसे हमें चेंज करते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में आ जाता है परमात्मा के मार्गदर्शन से। तो ये सारी बातें हम शिवरात्रि पर जब औरों को शिक्षा देते हैं, या तो कोई भी अपने आप ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक रहस्य प्राप्त करते हैं, तो उनके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है और सारा रहस्य का अच्छी तरह से जानकारी भी मिलती और पता भी चलता है कि कैसे शिव परमात्मा के लिए ही रात्रि क्यों कहा, बाकी सभी के लिए आप देखेंगे कृष्ण के लिए कहा जन्माष्टमी, राम के लिए कहा रामनवमी, गांधी जी के लिए कहा गांधी जयंती, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, लेकिन शिव के लिए ही रात्रि क्यों कहा? क्योंकि ये कलयुग रूपी अंधकार रूपी रात्रि से हम कहां जा रहे हैं, रिक्रिएशन, जो मेन सेमिनार का थीम है कि गोल्डन भारत बन जाए, रिक्रिएट हो जाए। तो परमात्मा ही हमें मार्गदर्शन उसके लिए दे रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि जो भी त्योहार है उसका आध्यात्मिक रहस्य जब हम जानते हैं तो अच्छी तरह से हम उसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और ये फिर एक दिन के सेलिब्रेशन की बात नहीं है, लेकिन हमारा पूरा लाइफ ही हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आपने बहुत राइट कहा कि सेलिब्रेशन ये एक दिन का नहीं होता है, जैसे वन ऑफ द फेस्टिवल के बारे में आपने बात कही, तो ऐसे तो हर कोई के, हर देवी का एक फेस्टिवल है, और इस तरह करके पूरे 365 दिन नियर अबाउट फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब उत्सव अर्थात उत्साह। तो अगर सारा समय उत्साह में रहते हैं उनके लिए फिर फेस्टिवल्स की जरूरत होगी, क्योंकि हम सारा समय उत्साह में नहीं रहते हैं तो एक दिन फेस्टिवल्स इसलिए मना लेते हैं। और एक तो उसमें उमंग रहता है, उत्साह रहता है, जील एंड एंथुजियाज्म, और एट द सेम टाइम थोड़ा कुछ ऐसा ट्रेडिशन भी होता है उसमें, वैसे शायद हमको पता भी नहीं हो, लेकिन वो ट्रेडिशन उस दिन किया जाता है, बड़े करते हैं, पंडित जी कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि ये भी कुछ लाइक न्यू अलग डे हो जाता है। तो चाहे उसके ट्रेडिशन के पीछे का रहस्य नहीं पता, जैसे मीराबेन ने एक ट्रेडिशन का बताया, एक फेस्टिवल का, वैसे ब्रह्मा कुमारीज में अगर आप इसका कोर्स करो तो आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरी फेस्टिवल और ईच एंड एवरी जो रिवाज है उसके पीछे का भी रहस्य यहां बताते हैं कि किस लिए ये मनाया जाता है। तो अगर हम वास्तव में जो हमारा थीम भी इस सेमिनार का है गोल्डन भारत, तो सारा समय ही उमंग उत्साह में रहे तो और जरूरत ही नहीं शायद कोई फेस्टिवल्स का। तो एक और बात जो फेस्टिवल्स में होता है कि जिसमें परिवार मिलते हैं, फेस्टिवल इसलिए भी मनाते हैं, होली है, लोहड़ी है, दिवाली है, आप देखेंगे हर फेस्टिवल में एक ट्रेडिशन का है, आज जो रीति रिवाज चलता है वन स्टाइल है, और एक परिवारों का मिलन है, दशहरा है, उसमें भी एक दूसरे के घर जाते हैं, वो सोना बांटते हैं। तो आखिर भी इसके पीछे जो रहस्य है कि परिवार मिलते हैं, तो फेस्टिवल और परिवार मिलन ये कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये हमको आदरणीय भ्राता रविंदर जी बताएंगे।
फिर से कहें।
फेस्टिवल्स में परिवारों का मिलना होता है, तो क्यों ये परिवार मिलन का रूप दिया गया? कभी कभी फेस्टिवल्स पीछे हो जाते हैं, मेन मिलना ही चलता रहता है और फिर बातचीत पूरी बिजनेस की वही होता है, और कभी कभी वो एक हमारे लिए वो एक हेडेक भी हो जाता है, अरे दिवाली है जाना पड़ेगा उसके घर। तो ट्रेडिशन को रखना भी है लेकिन रहस्य के साथ।
पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो अपन सब पहले इकट्ठा ही रहते थे और सारे उत्सव हम सभी इकट्ठा ही मिलकर करते थे, तो इसलिए वो फैमिलिटी की जो बात थी वो बहुत मजा आती थी उसके अंदर। अभी क्या हो गया, सब परिवार अलग अलग हो गया, अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, तो इसीलिए ये उत्सव भी हम इसलिए मनाते हैं ज्यादा तौर पर कि भाई चलो आज आपके घर में हम लोग आते हैं, हम वहां उत्सव मनाते। गणपति का भी देखिए ना, हमारे महाराष्ट्र के अंदर यही हाल है हमारा, पांच भाई होंगे ना, आज मेरे घर में गणपति, अगले साल आपके घर में, अगले साल आपके घर में, तो क्या होता है फिर उस घर में जाकर सबका मिलना होने लगा। तो ये जो परिवार का जो मिलना था शुरू का कि इकट्ठा रहे ये करे, और अभी का जो है फैमिली में तो हम लोग सभी इकट्ठा रहने की जो बात है वहां जाकर हम उत्सव मनाते हैं, ये इसलिए भी ये फीलिंग अच्छी आती है। इससे क्या होता है, एक दूसरे का जब मिलाप होता है ना, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि गिव एंट्री, अंदर क्या डालना है हमें, ये हमें पता चलता उत्सव से, क्या मुझे अंदर डालना चाहिए। आपसे सीखने को मिलता है, जब फैमिली इकट्ठी होती है आप बात करते हो, आप बात करते हो, गिव एंट्री, उससे क्या हो जाता है चार्ज बैटरी, मेरी बैटरी चार्ज होती है, अरे हाँ ओके अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा, तो मेरी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाती है। और फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, स्टॉप कॉमेंट्री, मेरा कॉमेंट्री स्टॉप हो जाती है, मना ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये जो बातें हैं ना ये हमारी स्टॉप होना शुरू हो जाती है और हमारा सब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना ऐसे होने लगता है। तो गिव एंट्री, क्या हमें अंदर डालना है वो हमें पता चल जाता है उस समय परिवार में आने से, फेस्टिवल मनाने से। उसके बाद में हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है, चार्ज बैटरी होती है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो कमेंट्री आज तक चलती है, ये मेरा मानता नहीं है, ये करता है वो करता, उत्सव के दिन मुझे लगता है कोई गिला शिकवा नहीं करता है ना, सब अच्छी बातें बता देना ये अच्छा है ऐसे, तो स्टॉप कॉमेंट्री, हमारी कॉमेंट्री भी उस दिन स्टॉप हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो आती है ना परिवार में उस समय, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, डोंट मिस लॉटरी। हमारी जो लॉटरी है ना, उस संधि जो मुझे मिली है मुझे आगे आने की, या मुझे बोलने की, या मुझे वो उत्सव फेस्टिवल मनाने की, या परिवार को इकट्ठा लाकर एक मजबूती की नींव बनाने की, वो लॉटरी मुझे मिस नहीं करनी होती, वो एक मुझे एक उससे मैसेज मिलता है। और लास्ट में आता है मेंटेन विक्ट्री, जो मैं अभी परिवार के लिए इकट्ठा जो आया है इसके लिए मैं जो कर रहा हूं उसको मेंटेन करना है, वो जो तो मेंटेन विक्ट्री, वो जो विजय मिली है, वो जो मुझे खुशी मिली है, वो मुझे जो उससे प्यार मिला, उस क्षण मुझे जो मैंने उत्सव मनाया परिवार के साथ, वो क्षण मेरे अंदर रहे और उसी को लेकर मैं अपने जीवन को चलाऊंगा तो मेरे जीवन के अंदर वो विजय आएगी। तो ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये फैमिलिटी में एक बात आती है कि हम अगर ये करें, गिव एंट्री, चार्ज बैटरी, स्टॉप कॉमेंट्री, फोर्थ वन है डोंट मिस लॉटरी, और फिफ्थ वन इज है मेंटेन विक्ट्री, तो मुझे लगता है परिवार खुश रहेगा।
एक बात और भी है कि जो फेस्टिवल आते हैं तो उस दिन, जैसे कि शिवरात्रि आई या तो कृष्ण जन्माष्टमी आई, तो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण को याद करते हैं कि हमको भी उनके जैसा बनना है, माना हमें ये स्मृति दिलाता है त्योहार, ये भी एक महत्व है।
कुछ त्योहार के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और हमारे लोकल बहुत से त्योहार होते हैं, तो बहुत से जो त्योहार हैं वो फसल कटने और बोने के बीच का जो टाइम है उसमें आते हैं, और उस टाइम पे जो घर की बेटियां दूर दूर ब्याही होती हैं उनको घर बुलाते हैं, तो वो एक समय होता है जो फ्री होता है उस टाइम, फसल का भी कुछ काम नहीं होता है। आई थिंक वो भी एक महत्व है कि थोड़ा सब लोग, नहीं तो पुराने जमाने में कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय था, साधन था, जो रोटी रोजी रोटी जुटाते थे, तो शायद मुझे लगता है कि ये समय उनके लिए उत्तम होता होगा त्योहार मनाने के लिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फेस्टिवल के पीछे भी कोई रीजन था, जैसे हमारी बहन जी बता रही थी मीनाक्षी जी की, वो फसल बोने और काटने के बीच का था, तो एक्चुअली था कि उस समय फ्री है और हम मिल सकते हैं, तो फेस्टिवल एज सच वो कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये रीजन है। तो इसका मतलब अगर हम सारा समय जब भी मिले, जिससे भी पूरी समय हमारी यूनिटी रहे, सबके साथ मिलजुल कर करने की आदत हो और हर कोई के प्रति एक डिग्निफाइड फीलिंग हो, तो जरूरी नहीं कि हम फेस्टिवल मनाना पड़ेगा, हमको शायद मनाना ही नहीं पड़ता है। तो ये भी एक ब्रह्मा कुमारी इसका रिवाज है, वैसे यहाँ कोई फेस्टिवल्स मनाते नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरी फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उसके पीछे जो रहस्य है वो समझकर और वैसे बनना और वैसे करना, केवल वो बाहरी जेस्टर्स नहीं या कोई पंडित जी को बुलाकर नहीं, लेकिन वैसे करना, ये हमारा मेन मकसद होता है। तो इसलिए भी फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और एक न्यूनेस हो जाती है लोगों के लाइफ में। न्यूनेस नहीं है ना, कोई न्यूनेस ऑफ थिंकिंग नहीं है, तो फेस्टिवल के दिन थोड़ा न्यू हो जाता है, नया जुना हो जाता है, इसलिए भी फेस्टिवल मनाते रहते हैं। अब जब हम गोल्डन भारत की भी बात करते हैं, तो वास्तव में क्या फिर ये जो गोल्डन भारत, हम जो वैल्यूज फॉर रिक्रिएटिंग गोल्डन भारत आज का जो थीम है, तो इसमें ये सब भारतीय संस्कृति जो ट्रेडिशन, हम उसको ट्रेडिशन भी कहते हैं, तो ये वाली संस्कृति ये सब फिजिकल रूप से रहेगी या नहीं रहेगी? आदरणीय मीराबेन जी से क्वेश्चन है।
गोल्डन भारत फिर से बनेगा, क्योंकि जैसे रात दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, बारिश के दिन आते हैं, फिर ठंडी की ऋतु शुरू होती है, फिर गर्मी की ऋतु होती है, वापस बारिश आती है, सोमवार से लेकर के रविवार, फिर से सोमवार होता है, सुबह दोपहर शाम और रात, फिर से सुबह होती है, सोमवार से लेकर के रविवार, फिर से सोमवार होता है, जनवरी से दिसंबर, फिर से जनवरी, इन द सेम वे। अभी जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग से भारतीय संस्कृति से, डिवाइन संस्कृति से, ट्रांसफॉर्मेशन से फिर से गोल्डन भारत जरूर आएगा और हम सभी के सहयोग से आएगा, और हम सभी इसी कार्य में जुटे हुए हैं और आप सभी भी हमें यहां पर आकर के बहुत सहयोग दे रहे हैं, तो सचमुच गोल्डन भारत जरूर आएगा, जो शास्त्रों में इतना सारा वर्णन है भारत देश का। ऐसे तो नहीं कहा गया कि सोने की चिड़िया थी भारत, घी दूध की नदियां बहती थी, तो ये सारी जो बातें हैं शास्त्रों में वो होकर के गया है, इसीलिए ये सारी बातें हैं। तो हम सभी को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक हम सभी ये मान्यता देते हैं कि भारत गोल्डन भारत जरूर हो जाएगा।
वही बात है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ राम अभी तक है नर में, तो वैसा ही भारत लेने का प्रयास, लाने का प्रयास तो क्या, लेकिन 100% श्योरिटी हमको परमात्मा देता है और हम अपने व्यवहार की चेंज से हम खुद भी फील करते हैं, वेरी इजी और वेरी सर्टन ये भारत आएगा ही आएगा। एक और सिस्टम बहुत प्रचलित है, खैर अभी इतना नहीं है, लेकिन एक गुरुकुल सिस्टम होता था पहले, कि सेलिब्रेट एज होती थी तब गुरु किया जाता था और वो मैंडेटरी माना जाता था, चाहे वो राम थे या कृष्ण थे, हर कोई को वो गुरुकुल से जाना होता था और उसके बाद फिर वो गृहस्थी। तो ये एक हमारी भारतीय संस्कृति है, बहुत ही पावरफुल। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, जो पहले गुरुकुल था और खैर अभी गुरुकुल नहीं है, हम उसको एजुकेशन सिस्टम कह देते हैं, लेकिन क्यों ये एक तो सेलिब्रेट अवस्था में और उसके बाद गृहस्थी की जाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, हम जानना चाहेंगे सती भाई जी से, जो इस ज्ञान में बहुत पुराने भी है।
बेसिक उसका जो रीजन था कि जो गुरु होते थे वो बहुत ही लर्नड होते थे और सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्टेड होते थे और समाज में ये मान्यता थी कि जब इनके पास हमारे बच्चे जाएंगे तो वो संस्कार, क्योंकि आज के समाज में वही संस्कारों की कमी है जो ये डाउनफॉल दिखा है, दिख रहा है, और उस समय वो संस्कार काफी अच्छे थे, तो इसलिए भाईचारा भी था और स्नेह भी था। तो गुरुकुल की जो प्रथा थी वो बेसिक जो टीचिंग थी, एक बच्चे को जो चाहिए शिक्षा, जो चाहिए जो माँ बाप के अलावा उसके लाइफ को संपन्न करती है, तो वो उसको वहां मिलती थी और उसके बल स्वरूप, फलस्वरूप
वो एक कंट्रीब्यूट करता था सोसाइटी में, तो इसलिए गुरुकुल की जो प्रथा थी वो बहुत ही अच्छी प्रथा थी और आज भी हम उसको फॉलो करते हैं अलग। इसलिए आज जब भी माँ बाप बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो बेस्ट स्कूल की सोचते हैं कि कहाँ पे उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे और कहाँ पे उसको अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। और यहाँ पे भी विशेष ब्रह्मा कुमारीज में भी हम इसको गुरुकुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो अध्यात्म का पहलू है जो जीवन में शायद हम टच नहीं करते हैं, उसकी दिशा हमें बहुत अच्छी यहाँ दिखती है और मिलती है और जिससे जीवन बड़े अच्छे संस्कार आते हैं। और फिर हम जिस भी प्रोफेशन में रहें ऐसा लगता है कि ये संस्कार स्ट्रेंथ है और हम उसको साथ लेके चलें तो एक सफलता सहज जीवन में आ जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। थोड़ा सा और इसका हम देखते हैं, गुरुकुल जो होता है, जो पहले होता था कि एक तो सेलिब्रेट अवस्था में होता था, ब्रह्मचारी होता था और उसमें हर कोई को मतलब दे हैव टू गो थ्रू दैट सिस्टम पढ़ाई, चाहे वो राजनीति की शिक्षा देते, क्योंकि उसमें एक तो डिसिप्लिन सिखाया जाता था और सेलिब्रेट इसलिए ताकि डिस्ट्रैक्शंस और न हो तब वो एजुकेशन धारण कर सकते हैं, और दूसरा सबको एक जैसा, नो डिस्पैरिटी। गुरुकुल में चाहे सुदामा को लकड़ी लेनी कुछ जो काम करना है, श्री कृष्ण को भी चाहे वो राजा का बेटा बताते थे लेकिन उसको भी वही काम, तो नो डिस्पैरिटी। तो ये कारण था गुरुकुल में जाने का। तो इसलिए बच्चों में जब, क्योंकि अगर लकड़ी भी लेनी है उसके लिए भी बुद्धि चाहिए कि कौन सी लकड़ी जलाने वाली है, कौन सी लकड़ी फर्नीचर में यूज होनी है, मतलब हर एक सिंपल लकड़ी वाली चीज के लिए भी पहचान चाहिए, परख चाहिए। आगे चलकर जब वही बच्चा राजा बने तब उसको द वैल्यू ऑफ वर्क, आज छोटा सा भी उसके राजधानी में कोई काम करने वाला हो तो उसकी क्या वैल्यू है, उसके कारण भी राजधानी की एक शोभा है, उसको पता चले, उसको हर व्यक्ति के वैल्यू की, उसकी मौजूदगी की कीमत हो, इस कारण पहले गुरुकुल सिस्टम भी होता था। तो यही था कि जहां व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन और नो डिस्ट्रैक्शन, और तीसरा था कि कोई तरह का भेदभाव ना हो, हर कोई सोचे, इसलिए तो यूनिफॉर्म के प्रति एक स्टाइल बनाते हैं वो एक, कि कोई तरह का डिस्पैरिटी ना हो। तो ये एजुकेशन अगर हम जीवन भर लेते रहे वो तो सिर्फ गुरुकुल की बात करते हैं, और प्लस उनमें दूसरा ये भी था विजडम भी पूरा दिया जाता था, आत्मा परमात्मा ये गुरुकुल में होता था। तो ये सब शिक्षा विथ राजनीति, तो बाद में चल के जब कोई भी परिस्थिति आया, जैसे श्री राम के लिए बताते हैं कि इतनी बड़ी परिस्थिति आई कि पहली रात ये था कि राजा बनेगा और दूसरी सुबह ये बताया कि 14 साल का वनवास है, लेकिन इतनी डिफरेंट और बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में भी उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एक जैसा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ये वाली शिक्षा ली थी, और वो भी जब वनवास का भी बताते हैं ना कि कोई भी सिंपल वस्त्र सन्यासियों की तरह, खाना पीना भी नहीं, कंदमूल फल एक्सेट्रा, तो मतलब इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति और इतना बड़ा पोजीशन, दोनों में स्थिति एक समान थी, उसका कारण था उन्होंने जो पहले जो विजडम लिया था। तो ओनली एजुकेशन राजनीति नहीं था लेकिन आत्मा परमात्मा की ये शिक्षा भी ली थी। तो एक्चुअली ये जो गुरुकुल या टुडेज एजुकेशन सिस्टम, ये जो भारतीय संस्कृति का है, उसमें क्योंकि अगर इस मॉरल वैल्यूज की जो एडिशन हो जाए और विजडम की एडिशन हो जाए तो शायद हमारा वही जो गुरुकुल हम कहते हैं वो सारा अभी भी आ जाए, और अभी भी बच्चों में वो राम की तरह एक रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी, ये नेचर आ जाए। बहुत बार पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के ये अप्स एंड डाउन्स होता है, इतनी सी बात कह दो अप और इतनी सी बात कह दो डाउन। मुझे लगता है हर कोई पेरेंट इसके गो थ्रू करते हैं कि इतना सा कि इंटरनेट नेट भी देरी से चल रहा है, अपसेट, बहुत डिफिकल्ट, वो भी पीरियड वो क्यों, क्योंकि बिल्कुल स्टेबिलिटी की नॉलेज नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी की नॉलेज गुरुकुल में पहले दी जाती थी, इसलिए वो बच्चे वैसे निकलते थे। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम ये विशेष पूरी जो ये नॉलेज है, इसमें ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा सेटिस्फाई होता है कि नो डिस्ट्रैक्शन वाली स्टेज, बहुत जीवन नियम संयम पूर्वक, और उसमें ये शिक्षा प्लस पूरा डिसिप्लिन। आज ही आपने देखा होगा 4 बजे उठना, 7 बजे क्लास एंड 365 डेज अ ईयर। ये 5 डेज का डिसिप्लिन नहीं है लेकिन 365 डेज अ ईयर, तो वो डिसिप्लिन है। और प्लस भोजन में भी एक डिसिप्लिन, ये नहीं कि जब चाहो जैसे चाहो खाते जाओ जहां दिखे, तो वो भी डिसिप्लिन। तो अगर हमारा पूरा जीवन ही डिसिप्लिन हो, इसके लिए पहले गुरुकुल करते थे। तो अगर पूरा जीवन डिसिप्लिन हो तो फिर गुरुकुल की जरूरत ही नहीं है। तो इसी संस्कृति को रिवाइव करने के लिए ये हमारी यहाँ ये शिक्षा दी जाती है, जिससे वो पूरी जो संस्कृति है जो एक्चुअली खाली अभी बुक्स में रह गई है या एक जेस्टर्स रह गया है, लेकिन वो हमारे जीवन में आ जाए। तो क्या कहेंगे, भारतीय संस्कृति की इम्पोर्टेंस है या नहीं है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या वो मॉडर्निटी से नजदीक है या कहेंगे हम इट इज ट्रेंडी। हम हमारे सभी स्पीकर्स को पूछना चाहते इस बात को, इज इट ट्रेंडी कि जो हम कहते हैं कि इस तरह की संस्कृति, चाहे वो गुरुकुल है चाहे फेस्टिवल्स है, लेकिन विथ मीनिंग उसको मनाना, क्या उसको हम ट्रेंडी कह सकते हैं। एक एक
देखिए, जहां तक आप तो त्योहारों की बात कर रही हैं, तो मेरा, आपने खुद भी कहा कि हर त्योहारों के पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक रीजन होता है, चाहे वो शरद ऋतु का आगमन हो या ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो, चाहे वो सावन हो चाहे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, हर के पीछे एक सावन होता है। अब जैसे संक्रांति और पोंगल अब से 1000 साल पहले अलग अलग जगहों पर शुरू हुई, लेकिन कारण एक ही था कि सूर्य का दक्षिणायन में जाना, और ये चाहे मेरे ख्याल में हर संस्कृति में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में जितने हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, बिहू के रूप में या पोंगल के रूप में या संक्रांति के रूप में या लोहड़ी के रूप में, हर त्योहार के पीछे जो रीजन है वो आध्यात्मिक भी है और साइंटिफिक भी है। तो जो चीज सत्य है उसकी रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होती, वो रहेंगे चाहे उनको मनाने का स्वरूप बदल जाए, क्योंकि जो साधन अब से 1000 साल पहले नहीं थे वो आज है, लेकिन सत्य यही है कि वो चीज अब भी एग्जिस्ट करती है, वो रेलेवेंस है, उसको बनाया जाएगा, उसको सेलिब्रेट करा जाएगा, शायद बनाने में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, दे विल रिमेन, दिस इज माय ओपिनियन।
हां जी, अब से भी ओपिनियन सभी से हमराए, इज इट ट्रेंडी।
मुझे लगता है कि हमने भारतीयों ने आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति के साथ एक बहुत अच्छा सामंजस्य बना लिया है, क्योंकि इसका एक उदाहरण, और ये भी नहीं, अभी लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव होते हैं, दूसरे की संस्कृति को अपनाना शुरू करते हैं, अपने एरिया में ले जाके फिर उसमें दूसरों को भी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपने एयर इंडिया में काम करते हुए 25 साल बॉम्बे में काटे हैं, तो गणपति का जो त्यौहार था वो हमारे एरिया में नहीं मनाया जाता है, लेकिन बॉम्बे में मैंने उसको सीखा, और मैं अभी अपने माता पिता और अपने ससुराल में भी बोलती हूँ कि वो जो पीरियड आता है गणपति के दौरान, आप प्लीज गणपति की पूजा किया करो, और मैं जब उस पीरियड में वहां होती हूँ तो करती ही हूँ, गणपति नहीं रखती हूँ, लेकिन ऐसा तो ये सामंजस्य एक संस्कृति से दूसरी का, और क्योंकि ये बहुत प्राचीन युग से चला आ रहा है तो हमने आधुनिक में भी इसको मोड़ लिया है, लाइक सामंजस्य कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है।
इसमें अगर मैं इस प्रश्न को और क्लियर करूं कि मतलब वो एक मनाते हैं, वो तो चलो फेस्टिवल्स एक एंजॉयमेंट भी हो गया है, लेकिन अगर उसकी वैल्यूज को हम पूरा अपना ले लाइफ में, तो और वो वैल्यूज को अपनाते हुए चाहे फिजिकल मनाए या नहीं मनाए, लेकिन वो वैल्यूज हमारी लाइफ में ऑलवेज है, तो अगर वो वैल्यूज ऑलवेज है तो वेस्टर्न कल्चर को भी हम अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब जो जो अच्छाइयां है उसमें, लेकिन उस वैल्यूज के हिसाब से पूरा अगर जीवन चले तो फिर फेस्टिवल्स मनाने की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी, क्या कहेंगे?
फेस्टिवल मनाने की जरूरत तो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये हमारे एक प्राचीन काल से जैसे मैंने बोला चला आ रहा है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो ये तो कभी खत्म होगा नहीं और इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। और हमें शायद हमें खुद को किसी टाइम लगेगा कि हम इन चीजों से दूर जा रहे हैं, तो हो सकता है फिर से अपनाएं उसको और अलग तरह से अपनाएं, लेकिन जरूरत रहेगी।
देखा में फेस्टिवल गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू री एनफोर्स अवर फेथ एंड बिलीफ एंड इट्स एक्ट एज ए रिमाइंडर एंड इट पास ऑन दोज वैल्यूज टू अवर नेक्स्ट जनरेशन एंड नियर बाय। जैसे गणपति उत्सव की बात करी और दुर्गा पूजा की बात करी, अब से 10 साल पहले दिल्ली में इतने नहीं होते थे, अब हर सोसाइटी में गणपति और दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, तो मेरे ख्याल में दिल्ली ने भी इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह अपना लिया है। 2006 में मैं मद्रास गया था, तब तक वहां पर होली नहीं मिलती थी, बनती ही नहीं थी होली, लेकिन अब मैं 2018 में वहां पर था तो होली मनाई गई। इतना परिवर्तन आ चुका है मेरे ख्याल में, जो मूल जो उनके पीछे एक जो भी वजह है वो रहती है, और अडेप्टेबिलिटी शायद हमारी संस्कृति का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। तभी दिल्ली में आज आपका दुर्गा पूजा और गणपति पंडाल देख सकते हैं, और चेन्नई और त्रिवेंद्रम में आप होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात पे भारतीय होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए।
आदरणीय मीराबेन जी से भी क्वेश्चन है कि ये संस्कृति को हम जब जीवन में ले आते हैं तो वो जीवन का जब वो जीवन प्रैक्टिकल वैसा बन जाता है तो आपको क्या लगता है आपका उत्सव उत्साह, तो इसमें अगर डिफरेंस नहीं रहता है तो वो लाइफ कैसी है या पर डे वाली लाइफ कैसी है?
भारत जब गोल्डन एज बन जाता है, गोल्डन भारत जब बन जाता है, तो उस समय डेली, जैसे पहले मैंने कहा था कि रोज ही सेलिब्रेशन होता है, रोज उमंग उत्साह है और डेली फेस्टिवल है, और जो वहां पर देवी देवताएं हैं वो देवी देवताएं नेक्स्ट टू गॉड है, परमात्मा के जैसे ही है, तो उनको सारी वैल्यूज भी उनमें है और इसीलिए डेली फेस्टिवल है। तो फिर यहां पर गोल्डन एज में सेपरेट एक दिन मनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि डेली ही फेस्टिवल है। और एक बात मैं साड़ी के बारे में कहना चाहूंगी कि बहुत ग्रेसफुल है और बहुत रॉयल ड्रेस है, और इसलिए देवी देवताओं का, जैसे आपने बताया संगीता बेन ने कि देवी देवताओं का वही ड्रेस है, तो बहुत रॉयल और ग्रेसफुल ये ड्रेस है।
अच्छा, 10 मिनट्स है हमारे पास, हम चाहेंगे कि ऑडियंस आपके तरफ से भी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो किसी के।
अलग लगता है, थोड़ा अच्छा झलकता है, इसके बारे में आप जरा।
क्वेश्चन है कि शादियों का जो रिवाज चलता है कम्युनिटी वाइज ही ज्यादातर चलता है, हर कम्युनिटी के अपने रिवाज होते हैं और उससे भी एक थोड़ा अच्छा लगता है, अलग अलग रिवाज है अलग अलग कम्युनिटी में, तो इसके पीछे का रहस्य हमारी आदरणीय बहन जी मीरा बहन जी आप ही बताएंगे। मृत्युंजय भाई आ नहीं पाए कुछ कारण।
रिवाज कौन सा आपने कहा? अच्छा,
डिफरेंट रिचुअल्स ड्यूरिंग एक शादी के फेस्टिवल और अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग रिवाज है, तो क्या ये इसके पीछे क्या रहस्य है शादियों का?
शांति,
शादी, मैरिजेस।
ओके, शादी के पीछे। अच्छा अच्छा, वन वे सेलिब्रेशन ही है और हर एक अपनी रीति से ही सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो मेन तो बात यही है कि आपस में जो जीवन आगे व्यतीत करे वो बहुत ही शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक, प्रेमपूर्वक, आनंदपूर्वक वो जीवन व्यतीत करे और एक दूसरों की बातें समझे। रहस्य मुझे तो यही लग रहा है।
बस उसके पीछे दीदी ने राइट बताया, चाहे रिवाज कुछ भी हो फाइनल एम यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे और यूनिटी हो, और इसके ही वो अलग अलग चाहे सात फेरे, हमें तो इतना नहीं पता है, लेकिन इस तरह जो भी रिचुअल्स करते हैं, तो अगर ये हमारे लाइफ में है ही, हो ही जाए, मेरा नेचर ही ऐसा हो कि मैं अपनी प्रॉमिस को कभी तोड़ूंगा नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर ये रिवाज वो नहीं, तो अभी रिवाज बनकर रह गया है सिर्फ उस दिन के लिए, उस समय के लिए एक अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअल लाइफ में कभी कभी फॉलो भी नहीं होता है, तो वो नेचुरल ऑलवेज ही होता रहे। जो हम यहाँ शिक्षा लेते हैं, ऑलवेज डेडिकेटेड, ऑलवेज डिवोटेड, ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग, बस यही है। हाँ जी,
ओम शांति। बहुत आनंद आ रहा है इस सेमिनार में। एक सवाल बहन मीरा जी ने कहा कि साड़ी बहुत सुंदर पोशाक है, देवी देवताओं का पोशाक है, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि फिर हमारे देवता पैंट शर्ट में क्यों पाए नहीं जाते?
नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते? हाँ, मतलब बताया नहीं जाता।
जैसे एयर इंडिया ने भी साड़ी को बहुत प्रमोट किया है, हमारी संस्कृति का एक विशेष पोशाक है ये, तो ये स्त्रियों के लिए तो है मापदंड, हमारे पुरुष धोती कुर्ते में क्यों नहीं नजर आते? हमारे पुरुष पैंट शर्ट में ही नजर आते हैं, हमारे देवी देवता तो पूरे
पोशाक में,
बिल्कुल धोती है, अंगवस्त्रम है, कुर्ते हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, तो वो क्यों नहीं प्रमोट करती है एयर इंडिया?
तो एयर इंडिया वालों को पूछना पड़ेगा।
बिल्कुल,
अजय प्रकाश भाई
कभी क्या।
अच्छा, अमृता शरण जी डायरेक्टर पर्सनल, एयर इंडिया में ये भी प्रमोट होना चाहिए फिर धोती कुर्ता।
देखिए, आपका जो सवाल था उसकी शायद जो भी भावना रही हो, लेकिन दो तीन चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो विमानन इंडस्ट्री एक बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और उसमें सेफ्टी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, तो अगर हमारे जो कैप्टन्स हैं और जो फ्लाइट स्टीवर्ड हैं अगर वो धोती में रहेंगे तो एक मैं नहीं समझ। ओके, प्लीज कम अगेन।
आप ये जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप अगर किसान देखें जो सबसे स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी करते हैं खेतों में, वो धोती में बहुत बहुत इजीली करते हैं।
मैं इस बात को आपकी चले मानता हूँ, लेकिन
ये आप जो कह रहे हैं कि इट्स मेंटेनेंस और सेफ्टी इश्यू, आई बेग टू डिफर।
एनीवे, यू हैव ऑल द राइट टू डिफर, बट फैक्ट इज कि देयर आर सर्टेन ड्रेस कोड्स, यूनिफॉर्म कोड्स फॉर द फ्लाइंग क्रू व्हिच वी अडहियर टू। एंड सेकंड एस्पेक्ट, वन वंडरफुल थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, As far as the khadi is concerned, we are promoting it like anything. Now our crew from sometime, have you already implemented that khadi jackets and all those? We have already implemented the khadi kurtas and jackets for our crew. And second thing is, those who are traveling with us, first class, they must be aware, we give a beautiful pouch of toiletries, and it is made of khadi, and all khadi brands of sanitizer, lotions, soap, those are there. Trust me, we are doing a wonderful job in promoting our culture, khadi, as well as related products. Thank you. Sorry?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने या नेक्स्ट लेवल पर वो हर जगह आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाओ वो हिंदी में भाषण देते हैं और उनका वो कुर्ता उनका वो मोदी जैकेट आज हम लोग सब बड़े गर्व से पहनते हैं पर मेरा यही कहना है कि अगर ये मापदंड साड़ी का साड़ी ऑल्सो इज अ डिफिकल्ट अटायर फॉर सेफ्टी इफ यू सी इट्स नॉट अ वेरी कंड्यूसिव ड्रेस सो आई विश we could have an Indian entire for the men and the women.
Thank you so much. We'll bear in our mind. Thank you so much. We'll bear in mind. We'll do our best.
वैसे भावार्थ यही है कि जैसे देवी देवताओं का ड्रेस देवियों का ड्रेस साड़ी है देखो देवताओं का भी जो पोशाक है वो चूड़ीदार टाइप बताते हैं श्री कृष्ण का भी कई जगह बताया जाता है तो वो तो अभी भी चल भी रहा है और बल्कि शादियों में तो ये बहुत रॉयल ड्रेस माना भी जाता है उस तरह के बड़ी ड्रेस में तो वो है भी जो इंडियननेस है कुर्ते आप देखेंगे यहाँ हमारे बल्कि ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई आप देखते होंगे जो भी सेवाधारी आप देख रहे हो उसमें क्या देख रहे हो वो देखते हैं कुर्ते और चूड़ीदार में होते हैं तो उस तरह का अटायर है और हम प्रमोट करते हैं और जो भी करते हैं और इंडियन के फेस्टिवल्स में जो भी हाउस होल्ड में भाई जरूर पहनते हैं इस तरह का एक रॉयल माना जाता है बल्कि लगता है आज वो हट के दिन है ऑफिशियल ड्रेस तो वो रेगुलर होता है लेकिन वो हट के दिन एक अपनापन लगता है जब वो वाला तो इट्स नॉट दैट वी डोंट यूज इट वी यूज इट इन अवर कल्चर इवन टूडे अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद एक लास्ट क्वेश्चन
मैं यदि आध्यात्मिक मंच है तो मीरा बहन से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले जो आत्मा का जो जर्नी होती है उसके ऊपर कोई विस्तार से अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा लगेगा
आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है उसका कभी विनाश नहीं होता और आत्मा ये वस्त्र धारण करती है जैसे आपने बताया कि एक जन्म के बाद दूसरा होता है और दूसरा वो जन्म लेती है तो ये शरीर आत्मा का एक घर है एक वस्त्र है जो समय व्यतीत होने के बाद में वो चेंज करती है जैसे ही आत्मा और शरीर का हिसाब किताब पूरा होता है उस आत्मा का उस शरीर के साथ तब उस देह का त्याग करके वो दूसरा शरीर धारण करती है जैसे कोई मनुष्य आत्मा है मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था घर का कि घर ढूंढ रहे हैं तो जैसे ही घर मिल गया तो उसको ठिकाना हो जाता तो आत्मा का भी जब दूसरा घर रेडी होता है तो यहां पहले से पहला जो होता है शरीर वो त्याग करती है लेकिन सिर्फ आत्मा ऐसे ही नहीं जाती उसके साथ मन बुद्धि और संस्कार ये भी साथ में जाते हैं तो संस्कार कैसे बनते हैं हमारे कर्मों से बनते हैं अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका फल स्वरूप श्रेष्ठ संस्कार होते हैं और आत्मा श्रेष्ठ संस्कार साथ ले जाती है और उस अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है
इसमें कितना समय लगता है और क्या इसी टाइम डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस में जन्म होता है या किसी और टाइम एंड डायमेंशन स्पेस में होता है There are millions of galaxies.
वैसे तो कहा जाता है कि घर रेडी होता है तब यहाँ छोड़ती है और उसमें चली जाती है ऐसे कहा जाता है कि पुराना घर छोड़ती है नया धारण करती है
दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन प्लीज
आप सभी ने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। बट एक और एस्पेक्ट जो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा उससे बोले वो ये है कि कास्ट को एक थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है भारतीय संस्कृति में। जब एक शादी होती है तो एक ब्राह्मीण लड़का है तो वो ब्राह्मीण लड़की से शादी करता है, इसी तरीके से काफी और कास्ट में भी होता है, तो इसका क्या रेलेवेंस है और क्या आज के टाइम में इतना रेलेवेंट है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग द लास्ट क्वेश्चन।
मीराबेन जी,
यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में यहाँ पर हम जन्म से नहीं लेकिन कर्मों के अनुसार मानते हैं कि हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए और सभी आत्मा है और सारे विश्व के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सभी आत्मा भाई भाई है, तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में कास्ट और क्रीड लैंग्वेज और ये सारी बातों से ऊपर चले जाते हैं।
एक्चुअली संस्कृति केवल जो चली आ रही है वो भी नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी रहस्य होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ और भी रूप ले लेता है जो आज हम देखते हैं, कास्टिज्म एक डिस्टिंक्शन हो गया, वास्तव में वैसा डिस्टिंक्शन पहले कभी था नहीं है, ये तो धीरे धीरे मैन मेड हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति की बात हमारी चल रही है, भारतीय संस्कृति में एक कास्टिज्म नहीं था, इसलिए हमने गुरुकुल का एग्जाम्पल दिया, तो चाहे वो कोई भी पढ़ता है, चाहे वो सुदामा है, चाहे वो सबको वो कोई डिस्पैरिटी नहीं थी, तो संस्कृति में ये डिस्पैरिटी वाला शो है नहीं भारतीय संस्कृति में, ये तो मैन मेड है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है, तो इसलिए एक्चुअल जो भारतीय संस्कृति, इफ वी जस्ट टेक द एसेंस, पूरे इस सेमिनार का सार जो रहा है कि भारतीय संस्कृति जो थी वो यही थी जिसमें कंप्लीट समर्पणता परमात्मा के प्रति रही और आपस में यूनिटी प्यार जिसका प्रतीक फेस्टिवल्स मिलना जुलना यूनिटी और एक हर व्यक्ति के साथ हमारा अच्छा लेन देन हो, इसलिए वो फेस्टिवल्स का सिस्टम है, इसलिए झुकने की भी प्रथा रही, हाथ जोड़ने की भी प्रथा रही। एक और यहाँ मेडिकल रीजन जो हाथ जोड़ने का है वो ये भी बताते हैं, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये दोनों हाथ होता है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन दोनों मैच करना होता है, जब वो हैंडशेक होता है वो क्या होता है ये फुल हार्ट हो जाता है, पूरी दिमाग से पूरे दिल से मैं आपको नमस्ते करता हूँ, और जब हैंडशेक होता है वो 50% एक हाथ ही, तो इसलिए भारतीय का जो सिस्टम है संस्कृति है हाथ जोड़ना वो इस कारण भी है, तो वास्तव में इसके पीछे पूरा फीलिंग्स की बात है जो हमने फाइनली निचोड़ लिया है कि कैसी हमारी फीलिंग्स भरपूरता की होनी चाहिए, कैसी हमारी फीलिंग्स नम्रता की होनी चाहिए और सहयोग की फीलिंग्स होनी चाहिए, आपस में मिलने जुलने की फीलिंग्स होनी चाहिए, अगर वो फीलिंग्स हमारी थ्रू आउट द ईयर है 365 डेज अ ईयर, दिस इज भारतीय संस्कृति, न केवल एक दिन मनाना उसको कहेंगे भारतीय संस्कृति लेकिन 365 दिन मनाना, लेकिन अब उसकी क्या ट्रेनिंग है, कैसे ऑलवेज ही हम रहे, एक दिन रहना तो बहुत आसान है ना, हैप्पी दिवाली विश किया, हैप्पी न्यू ईयर विश किया, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी होली, हैप्पी लोहड़ी विश कर दिया, लेकिन 365 डेज हमारी वो फीलिंग्स बनी रहे उसकी ट्रेनिंग हम ये 2-3 दिन आप थोड़ा उसका टेस्ट करेंगे, तो बहुत बहुत थैंक्स सभी का, विशेष हमारे मेहमानों का, स्पीकर्स का, बहुत अच्छे जवाब और डिस्कशन रही और आप सभी का भी, आपने बहुत पेशेंटफुली सबको सुना और अकॉर्डिंगली लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे रहे, तो बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति। 2 मिनट हम पहले मेडिटेशन करेंगे।